नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने कहा, भारत की आकांक्षा अगले 10 वर्ष में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपना योगदान 10% तक बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में समर्पित करने चाहिए। भारत ने कश्मीर पर गलत सूचना देने की रणनीति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता पर इसके प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत ने मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को रोमांचक शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता और पुणे में न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 113 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला जीती। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के योगदान की सराहना की। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान 2024 पर एक वीडियो संदेश में राष्ट्रपति ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की समृद्ध विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि है।
पिछले वर्ष विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने का सीधा प्रसारण मैंने देखा था। सभी देशवासियों के साथ मैं भी गर्व का अनुभव कर रही थी। सरदार पटेल हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पुरुष हैं। आइए सरदार पटेल की पावन स्मृति में हम सभी विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लें।
नए आयामों की खोज में भारतीय अंतरिक्ष यात्रा पर सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देते हुए इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्ष में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को 2% से बढ़ाकर 10% करने की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
इसरो प्रमुख ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की शुरुआत की है और साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए FDI को उदार बनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में 200 से अधिक स्टार्टअप हैं, जबकि 2014 में केवल एक स्टार्टअप था।
All these are adding to creating a more vibrant space economy. Today our aspiration is that India's contribution to global space economy is hardly 2% today. We would like to expand it to something like 10% in the coming 10 plus years.
अंतरिक्ष क्षेत्र के स्वदेशीकरण की प्रगति के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि भारत अपनी आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में भी काम कर रहा है। भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशनों के बारे में बोलते हुए डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि इसरो आने वाले वर्षों में अपना पहला मानव रहित मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि चंद्रयान जैसी उपलब्धियां देश को आत्मविश्वास देती हैं और देशवासियों को गौरवान्वित करती हैं।
अचीवमेंट लाइक दिस Chandrayaan 3 landing on lunar surface that give us confidence, that give us a rare opportunity of proud all across the globe, proud all across wherever any Indian is living, he could feel proud.
इस कार्यक्रम में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर भी मौजूद थे। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस के साथ C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा विमान परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमरेली में भारत माता सरोवर का उद्घाटन और करीब 4,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ साल ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने चाहिए। नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य विज्ञान तथा आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जड़ी बूटियों का अक्षय भंडार है। राष्ट्रपति ने कहा कि इसका दस्तावेजीकरण करने के साथ साथ इस पर आधारित शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी लोगों की जीवन शैली से सीख लेकर देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब विकास प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा समाज में बदलाव और विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि देश शिक्षा से प्रेरित सकारात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आज IIT जोधपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अनंत अवसरों और आशाओं का देश है तथा पूरा विश्व हमारी विकास गाथाओं में भागीदार बनने के लिए उत्सुक है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है। दीक्षांत समारोह में 1,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। श्री धनखड़ ने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय है व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता से आपदा जोखिम कम करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। मुख्य विषय पर केंद्रित 3 तकनीकी सत्र होंगे। हरियाणा सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग ने आगामी रबी मौसम के लिए सस्ती दरों पर प्रमाणित गेहूं के बीज की बिक्री की घोषणा की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रति क्विंटल 1,000 रूपये की सब्सिडी देगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकीकृत सरकारी रणनीति के महत्व पर जोर दिया है। उपराज्यपाल ने बडगाम के हुमहामा में सीमा सुरक्षा बल कश्मीर के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में नए भर्ती कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड के दौरान ये बात कही। इस समारोह में 629 नए भर्ती कांस्टेबलों को सीमा सुरक्षा बल में शामिल किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बहस में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। भारत ने इसे गलत सूचना फैलाने की पाकिस्तान की रणनीति पर आधारित उकसावे का शरारतपूर्ण और घिनौना कदम बताया है। बदलते परिवेश में महिलाएं शांति के निर्माता विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बहस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश को पाकिस्तान को जवाब देने का उचित अधिकार दिया। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने संबंधी पाकिस्तान की कोशिश की आलोचना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष के स्थायी सरकार के कारण देश की वैश्विक स्थिति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने आज पुणे में विश्व स्तर पर उभरते अवसरों को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क, रेलवे और मेट्रो सहित ठोस अवसंरचना विकास ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। चंद्रयान मिशन और टीकाकरण राजनय जैसी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि भारत में विशेषकर ब्रिक्स, क्वाड और अन्य वैश्विक साझेदारियों के साथ सहयोग में दुनिया का विश्वास बढ़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पश्चिम एशिया की बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इसका असर इस क्षेत्र और इसके बाहर के देशों की शांति तथा स्थिरता पर पड़ सकता है। भारत ने सभी संबंधित पक्षों को संयम बरतने और संवाद तथा कूटनीति की राह अपनाने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि चल रही शत्रुता किसी के हित में नहीं है। बेगुनाह बंधक और नागरिक आबादी इसका खामियाजा भुगत रही है। वक्तव्य में कहा गया है कि इस क्षेत्र में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क बनाए हुए है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसराइल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान में कई स्थानों पर तेज विस्फोटों की आवाजें सुनाई पड़ी। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इसराइल की सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो और हमले करके स्थिति को न बिगाड़े। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेस कल से 29 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी बेगोना गोमेज भी रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। स्पेन के राष्ट्रपति की ये यात्रा 18 वर्ष के बाद हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सांचेस बहुपक्षीय बैठकों से अलग कई बार मिल चुके हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति सांचेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ओडिशा में भयंकर चक्रवाती तूफान दाना से भद्रक, केंद्रापाड़ा, बालासोर, मयूरभंज और जगतसिंहपुर के तटीय जिलों में फसल और संपत्ति को बुरी तरह नुकसान हुआ है। तूफान से करीब 1,75,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं। इसका आकलन करने के लिए एक केंद्रीय टीम जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। कई गांव अब भी बारिश के पानी में डूबे हुए हैं और संपर्क से कटे हुए हैं। राज्य सरकार युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रही है। मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की जूनियर टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया है। निर्धारित समय तक दोनों टीम 2-2 से बराबरी पर थी। ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। 359 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की दूसरी पारी 245 रन पर सिमट गई। भारत को पिछले 12 वर्ष में पहली बार घरेलू टेस्ट श्रृंखला में हार मिली है। यशस्वी जायसवाल ने 77 और रविन्द्र जडेजा ने 42 रन बनाए। न्यूजीलैंड के लिए मिशेल सेंटनर ने 6 विकेट लिए। मैच में उन्होंने कुल 13 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। झारखंड में 5 जिलों के सीमावर्ती इलाकों में माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। श्री सिंह ने कहा कि माओवादी संगठनों को पकड़ने के लिए राज्य के संवेदनशील इलाकों में गहन जांच की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने कहा भारत की आकांक्षा अगले 10 वर्ष में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपना योगदान 10% तक बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में समर्पित करने चाहिए। भारत ने कश्मीर पर गलत सूचना देने की रणनीति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता पर इसके प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।